चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
वास्तव में उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं दिखाई दे रही थी, न ही उनके कपड़ों पर रगड़ का कोई चिन्ह या कोई शिकन थी। इसके अतिरिक्त एक बात और थी। आप तो वकील साहब जानते ही हैं कि मेहता रोड पर ट्रामों का चलना बंद हुए 15 वर्ष हो गए हैं। ट्राम की पटरियां भी अभी उखाड़ दी गई हैं और आज तो लोगों को याद भी नहीं रहता कि मेहता रोड पर कभी ट्राम भी चलती थी। पहले तो मैंने कहा था कि इस विषय में राय बहादुर साहब से पूछूं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया। एकाएक मुझे ख्याल आया, मैंने बड़े स्वाभाविक स्वर में उनसे पूछा, मेरा विचार है कि इस दुर्घटना ने आपके स्मरण शक्ति पर कुछ प्रभाव डाला है। क्या आप, मेरा मतलब है क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं जानता, मेरा नाम ज्योति प्रसाद है और मैं यहाँ पास ही राजा राम रोड पर रहता हूँ। देखिए, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यहाँ मेहता रोड से थोड़ी दूर पर एक राजा राम रोड जरूर थी, लेकिन विभाजन के बाद उस सड़क का नाम शहीद मार्ग हो गया है। अब तक तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास उनके मन में पैदा हुआ था, वो लुप्त होने लगा था। वो फिर से परेशान दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी और कोट की भीतरी जेब से एक बटुआ खोज निकाला। वह एक सुनहरी धारियों वाला बेहद कीमती चमड़े का बटुआ था और उसके ऊपर सुनहरी अक्षरों में उनका नाम अंकित था। वे कुछ क्षण उसे उलट पलट कर देखते रहे, फिर उन्होंने बटुए को खोला और उनकी जेब में से 10 रुपए का एक नोट खींच लिया। उन्होंने बटुआ मेज पर रख लिया और उलझन भरी दृष्टि से रोड को देखते रहे। उन्होंने एक बार फिर बटुए को टटोला और इस बार उसमें से 100 का नोट निकाला। उनके चेहरे पर उलझन के चिन्ह और गहरे हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो जीवन में पहली बार वो नोट देख रहे हैं। उन्होंने नोटों को वापस रख दिया। उनकी दृष्टि बटुए में ही संलग्न एक छोटी सी डायरी पर अटक गई। डायरी पर नीचे दाई और उनके नाम के प्रथम अक्षर खुदे हुए थे। डायरी के कवर पर केवल इतना लिखा हुआ था, डायरी 1962। वो बड़बड़ा है। हाँ, मैंने कहा। कुछ क्षण बाद वो बच्चों की तरह बोले, मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो गया है। मैं चुपचाप उनके मुंह की ओर देखता रहा। उन्होंने डायरी के 3-4 पृष्ठ पलटे और झुंझलाकर उसे मेज पर पटक दिया। हे भगवान, वो हताश स्वर में बोले। देखिए, मैंने सहानुभूति पूर्ण स्वर में उन्हें समझाने की चेष्टा की। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी दुर्घटना का मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि स्मरण शक्ति का आंशिक रूप से त्रास हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब बीती हुई बातों का प्रसंग सामने आता है या बीती बातें याद दिलाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से स्मरण शक्ति लौट आती है। मेरे विचार से आप इनमें फिर देखिए, मैंने बटुए की तरह संकेत करते हुए कहा, आपको इसमें से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जो आपके अतीत और वर्तमान में तारतम्य स्थापित करने में आपका सहायक सिद्ध हो सके। कुछ क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने बटुए की जेबें टटोलनी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने एक रंगीन फोटो निकाला। चित्र के मध्य में वो स्वयं बैठे हुए थे। उस चित्र में उनकी आयु कुछ 4-5 वर्ष मालूम होती थी। चित्र में उनके अतिरिक्त एक प्रौढ़ पुरुष, 2 वृद्धाएं, 3 युवतियां और छोटे छोटे बच्चे थे। सबकी सूरतों पर पारिवारिक समानता के चिन्ह विद्यमान थे। यह शायद आपके परिवार का चित्र है, मैंने कहा। मुझे मालूम नहीं, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। उसके बाद उन्होंने बटुए में से कुछ विजिटिंग कार्ड्स निकाले जिन पर केवल लिखा था राय ज्योति प्रसाद। कार्ड पर पता नहीं था। बटुए में एक लिफाफा था जिस पर लिखा था राय ज्योति प्रसाद, मॉडर्न प्लास्टिक लिमिटेड, ज्योति नगर। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, उन्होंने लिफाफे को मुट्ठी में भींचते हुए हताश स्वर में कहा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले, मेरा नाम ज्योति प्रसाद है। लिफाफे और विजिटिंग कार्ड पर राय क्यों लिखा हुआ है मैं नहीं जानता। मेरी आयु 23 वर्ष है। जी जी चोपड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का विद्यार्थी हूँ। मैं राजा राम रोड की 32वीं कोठी में रहता हूँ। आज मार्च की 11 तारीख है और सन है 1906। आज सुबह मेहता रोड पर हड़बड़ाहट में सड़क पार करते समय मैं एक ट्राम से टकरा गया था और अब 11 तारीख है। उन्होंने आंखें खोल दी मैंने उनके बटुए में से निकला हुआ लिफाफा उनके सामने सरका दिया। राय ज्योति प्रसाद, वो आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए, मैं राय नहीं, और यह मॉडर्न प्लास्टिक लिमिटेड, मेरा इससे क्या संबंध है? आखिर ये सब है क्या? अब मैं उसे कैसे समझाता कि सूरत शक्ल से तो वो मुझे फर्म के मालिक या भागीदारी लग रहे थे। मॉडर्न प्लास्टिक शायद आप ही की फॉर्म है, मैंने कहा। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, वो एकदम फूट पड़े। मॉडर्न प्लास्टिक, ये प्लास्टिक क्या भला है? मैंने प्लास्टिक नाम की किसी चीज के विषय में आज तक नहीं सुना। मैं हिचकिचाया। चोट ने शायद उन्हें 55-56 वर्ष पीछे अतीत में ढकेल दिया था। मैंने कभी किसी पुस्तक में पढ़ा था कि यदि कोई आपकी स्मरण शक्ति खो चुका है तो उसे उसके बीते हुए जीवन की याद दिलाने के लिए यदि उसके सामने किसी ऐसी घटना की चर्चा की जाए तो उसके पिछले जन्म से संबंधित हो उसकी स्मरण शक्ति लौट आने की संभावना हो सकती है। मैं तो उनके विषय में केवल उतना ही जानता था जितना उन्होंने बताया था। प्लास्टिक की एक ऐसी चीज थी जिससे वे मुझे संबंध प्रतीत हो रहे थे। देखिए, मैंने मेज को उंगली से खटखटाते हुए कहा, उदाहरण के तौर पर यह प्लास्टिक है। वो कुछ क्षण मेज को परखते रहे। यह प्लास्टिक है? ये तो बहुत सख्त है। हार्डनिंग से पहले यह भी प्लास्टिक ही था, मैंने अपने बीएससी के ज्ञान को प्रयोग में लाने की चेष्टा करते हुए व्याख्या की। प्लास्टिक की हजारों किस्में होती हैं। मजबूत और भारी बोझ संभालने वाली वस्तुएं बनाने के लिए यह प्लास्टिक प्रयोग में लाया जाता है। आपके आसपास दर्जनों ऐसी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जैसे कि ये एश्ट्रे, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसकी बेंत, मेरा पेन, मेरे बटुए का कवर, उस महिला के हाथ की टोकरी, उस सज्जन की बरसाती, सब प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं हैं। और देखिए, ये मेरी कमीज भी प्लास्टिक की ही है। वो बड़ी तन्मयता से मेरी बताई हुई एक एक वस्तु को देखते रहे। अंत में उनकी दृष्टि फिर मुझ पर आकर टिक गई। क्या यह वाकई 1962 है? उन्होंने एक बार फिर पूछा। जी हाँ, यकीनन, तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। और यदि आपको अपनी डायरी पर विश्वास नहीं है तो देखिए, काउंटर के पीछे कैलेंडर भी टंगा हुआ है। बाजार में घोड़े दिखाई नहीं देते, वो बड़बड़ाए, बग्घियां भी नहीं है, पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हे भगवान, ये कैसा स्वप्न है, मुझे प्लास्टिक के विषय में कुछ और बताओ। अब मैं कोई प्लास्टिक का विशेषज्ञ तो था नहीं। बीएससी की परीक्षा में प्लास्टिक का एक प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर का कुछ भाग मुझे याद था, वही मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया था। देखिए, मैंने एश्ट्रे की और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, जिस प्लास्टिक की ये एश्ट्रे बनी हुई है उसे बैकलाइट कहते हैं, और जहां तक मुझे याद है यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की सबसे पुरानी किस्मों में से एक है। यह किनोल और फार एल्ट्रहाइड के सम्मिश्रण से बनाई जाती है। शायद 1909 में टीकलैंड नाम के किसी सज्जन ने इसका आविष्कार किया था। और ये थर्मोसेटिंग क्या होती है? एक बार उन्होंने मेरी केमिस्ट्री की जानकारी को पुरेदना शुरू कर दिया। कितनी देर तक मैं प्लास्टिक के फॉर्मूला, उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स और उनकी पॉलीमराइजेशन पर लेक्चर झाड़ता रहा। वे भी एक विद्यार्थी की तरह एक एक शब्द को गौर से सुनते रहे, लेकिन मेरे सारे प्रयत्नों का परिणाम कुछ भी न निकला, बल्कि अब वो पहले से अधिक उलझ गए थे। मैंने एक घंटे से उनके साथ सिर खपाई कर रहा था, पर अब मेरा धीरज जवाब देने लगा था। देखिए, मैंने उकता कर कहा, इस प्रकार आप अपनी उलझनें दूर नहीं कर सकेंगे। यदि आप चाहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ जाऊं। क्या आपको याद है कि आप कहाँ रहते हैं? राजाराम रोड की 32वीं कोठी में, उन्होंने उत्तर दिया। नहीं, मेरा मतलब है आप अब कहाँ रहते हैं? राजाराम रोड की 32वीं कोठी में, मैं झल्ला उठा। नहीं, मेरा मतलब है, उन्होंने चुपचाप डायरी मेरे हाथ में थमा दी। डायरी के पहले ही पृष्ठ पर उनके नाम के नीचे उनका पता लिखा हुआ था, राय बहादुर ज्योति प्रसाद, 47 रिंग रोड। मैंने एक टैक्सी ली और उन्हें रिंग रोड की 47वीं कोठी में ले गया। एक प्रौढ़ सी महिला हमें भीतर लिवा ले गई। मैंने उन्हें विस्तार पूर्वक सारी परिस्थिति समझा दी और सलाह दी कि वो राय बहादुर साहब के डॉक्टर को फोन कर दें। लौटते समय राय बहादुर साहब ने मेरा नाम और पता पूछा, जो मैंने उन्हें बता दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो उसमें से कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। अगले दिन सुबह मैंने उनकी हालत जानने के लिए उनकी कोठी में फोन किया। एक व्यक्ति ने फोन रिसीव किया और उसने मुझे बताया कि वो रात भर बड़े आराम से सोए। सुबह वो कुछ थके हुए से तो अवश्य उठे थे, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था कि वो अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हों। डॉक्टर ने भी उनमें मानसिक अस्वस्थता के कोई लक्षण नहीं पाए। उन्होंने मुझे राय बहादुर साहब की सहायता करने के लिए धन्यवाद किया। बात आई गई सी हो गई। मैं तो इस बात को लगभग भूल ही चुका था, लेकिन पिछले सप्ताह जब मैंने समाचार पत्र में राय बहादुर ज्योति प्रसाद की मृत्यु का समाचार पढ़ा तो सारी घटना एक बार फिर स्मरण में आ गई। अपनी कहानी समाप्त करके कमल ने वकील श्यामनाथ की ओर देखा। वो वकील के मुख से निकले एक एक शब्द को बड़ी तन्मयता से सुन रहा था। कुछ क्षण वह विचारमग्न बैठा रहा और फिर सिर हिलाकर बोला, बड़ी विचित्र घटना है।
मेरा भी यही ख्याल है, कमल ने कहा।
मेरा मतलब है मिस्टर कमल कि आपने सचमुच रायबहादुर की बड़ी सहायता की है, लेकिन यह सहायता आप अगर बुरा न माने इतनी बड़ी तो हरगिज नहीं है कि इसकी कीमत 5,000 शेयर लगाई जाए, जिनका मूल्य इस समय कम से कम 70,000 रुपए है। बात तो ठीक है, कमल ने सहमति प्रकट करते हुए कहा। और इससे भी विचित्र बात यह है, श्यामनाथ ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, कि यह घटना पिछले वर्ष जून में घटित हुई, लेकिन आज से 7 वर्ष पहले राय बहादुर ने जिस वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे उसके अनुसार भी आपको मॉडर्न प्लास्टिक से 5,000 शेयर मिलने वाले थे, और 15 वर्ष पहले की जिस वसीयत को रद्द करके यह वसीयत लिखी गई थी उसमें भी यह क्लॉस मौजूद था। वकील साहब, मैंने तो इस विषय में सोचना ही बंद कर दिया है, लेकिन अगर आप विचित्रताओं का ही विश्लेषण कर रहे हैं तो शायद आप इसे भी देखना पसंद करेंगे। कमल ने अपनी जेब से समाचार पत्र की कटिंग निकाली जिसका शीर्षक था, क्रिया, राय बहादुर ज्योति प्रसाद प्लास्टिक के प्रणेता। कमल ने कॉलम के मध्यम से ही एक स्थान चुनकर पढ़ना आरंभ कर दिया। अपने शिक्षा काल के प्रारंभिक दिनों में राय बहादुर ज्योति प्रसाद को विज्ञान में कोई विशेष रुचि नहीं थी। BSc की परीक्षा करने के पश्चात आपने अकाउंटेंसी की शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी थी। सन 1906 में जब आपकी वायु 23 वर्ष की थी, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा अधूरी छोड़कर केमिस्ट्री की रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था, और कुछ ही वर्षों में आपने प्लास्टिक के विषय में कई नए तथ्य खोज निकाले और प्लास्टिक की कई नई किस्मों का आविष्कार किया। यह उन्हीं के परिश्रम का फल है कि आज मॉडर्न प्लास्टिक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक निर्मात्री फर्म है। वकील ने विचार करते हुए कहा, आप कह रहे थे कि सन 1906 में मेहता रोड पर वे ट्रॉम की चपेट में आ गए थे। जी हाँ, उन्होंने तो मुझे यही बताया था। अजीब बातें हैं साहब, वकील ने गहन निश्वास लेकर कहा। कमल उनसे सहमति प्रकट करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते थे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी बहुत ही अद्भुत, अनोखी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने वही कहानियाँ लेकर आऊँ। तो चलिए, अगली कहानी तक इंतज़ार करते हैं, और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।
चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।